October 18, 2006.
Father and son both have come. The forefathers were pandas of Srila Bhakti Vinod Thakur's time. Still, they are coming. ये लोग भक्ति विनोद ठाकुर के समय से ही इनके पिताजी के पिताजी और सब लोग हमारे गौड़ीय मठ के पंडे हैं, इसलिए हम लोगों को आने पर पथ प्रदर्शन करते हैं, वृंदावन में दर्शन इत्यादि कराते हैं और हम लोग भी इनको सम्मान देते हैं। वी ऑनर देम। So today, in behalf of our all Jastri devotees, I am honoring him.
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय अङ्गश्यामलिं सदाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डं जाकुदरोचितं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं भजिलसद्दामाभिरामः राधाकन्दले चितोज्जलभुजं ध्यायेन्दाम्।
गुरु गणांग गंधार्विका राधा विनोद बिहारी जी की कृपा से आज 12 दिन हो गए वृंदावन और मथुरा में 5-7 दिन पहले से अब तक निर्विघ्न रूप में और अच्छी तरह से हमारी परिक्रमा चल रही है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम और बुखार हो गया है, उसके लिए भी डॉक्टर हैं, सावधानी से रहना चाहिए जैसे कि न हो। श्री श्री माधुर्य का संदेश कुछ लोग ज्ञान को भक्ति का साधक बतलाते, ज्ञान नहीं होने से भक्ति नहीं। उनके अनुसार में आत्मतत्व और परतत्व का ज्ञान होना जरूरी है। आत्मतत्व और परतत्व क्या ज्ञान होना जरूरी है? ज्ञान के बिना वस्तुतः भक्ति में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति के साधन में भले ही दूसरी साधनाओं की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ज्ञान को भक्ति का साधक मानने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कुछ न हो, आत्मतत्व और परमात्म का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के संबंध में बतला रहे हैं, ज्ञान शब्द से ब्रह्म के 3 अंग माने जाते हैं, तत् पदार्थ का ज्ञान, तं पदार्थ का ज्ञान और ब्रह्म परब्रह्म और जीव के परस्पर संबंध का ज्ञान। तत् पदार्थ का ज्ञान, तत् माने भगवान, परतत्व के स्वरूप भजनीय श्री कृष्ण विषय ज्ञान, पर ब्रह्म श्री कृष्ण साकार है, सविग्रह तत्व है, सचिदानंद मयत्व उनकी स्वयं भगवत्ता है, नाराकृति पर ब्रह्म भक्त अखिल रसामित सिंधु अनंत सौंदर्य माधुर्य के पराकाष्ठा है। उनमें वे बहुत प्रकार की मधुर लीलाओं को करते हैं, चारुण्य भक्त बात्सल्य इत्यादि गुण उनका ध्यान, उनका परिकर, उनकी स्वरूप शक्ति, माया शक्ति विषय ज्ञान को तत्पदार्थ का ज्ञान होना जरूरी भी है। तम पदार्थ का ज्ञान, तम माने जीव तत्व, जीव विषय ज्ञान, जीव के जीवित कर रहे वही उसका जो स्वरूप तत्व है, वर्षा का सशक्ति से उत्पन्न है, विभिन्न तत्व है, कृष्ण के नित्य राग है, उनका अनुस्वातंत्र भी है, इन सब ज्ञानों को मिलाकर के तम पदार्थ का ज्ञान। और दोनों के संबंध में ज्ञान परतत्व श्री कृष्ण प्रभु है, जीव इनका नित्य दास है, कृष्ण विभु है और जीव अणु है, कृष्ण मायाधीश है और जीव माया के वश युक्त है। श्री कृष्ण पात्र की विस्मृति ही जीवों को माया का बंधन आता से दुख का था, श्री कृष्ण भजन ही माया मुक्ति और परमानंद का एकमात्र प्राप्ति का एकमात्र उपाय। ज्ञान को उन दोनों के बीच में परस्पर संबंध ज्ञान है। कोई कोई ब्रह्म और जीव के ऐक्य विषय ज्ञान की बात करते, वे पर ब्रह्म की शक्ति या साकार उनके सविशेष रूप को नहीं स्वीकार करते। उनके विचार से ब्रह्म निर्विशेष है, कोई गुण नहीं है, विशेषता नहीं है, और जीव अपरह में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म साहित्य मुक्ति जीवों के लिए ही चल रहा है।
ब्रह्मन दैट इज अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ जीवा,
यानी खुद जीवों को परम ब्रह्म सभी से परम श्री कृष्ण राम आदि को माया उपाधि धारी
राम एंड कृष्ण हैव कम फ्रॉम माया
इत्यादि करने के कारण ये मां भगवत चरणों में अपराधी हैं। विशेष करके जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान भक्ति का विरोधी है, इसलिए सर्वता सत्संग भक्ति साधन का एक मुख्य है। इसी परम स्वतंत्र महापुरुष की कृपा से साधु संघ में उनके मुख से निरंतर विघलित भगवत कथा श्रवण करने से साधकों के हृदय में ये तीनों प्रकार के ज्ञान अपने आप आ जाए, पृथक रूप में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं। पृथक रूप से प्रयास करने से के लिए हमारे जीव गोस्वामी ने भी सब लोगों ने इसको शास्त्रकारों ने भी मना किया। स्वरूप गोस्वामी कहते हैं ज्ञान और वैराग्य भक्ति मार्ग के अवरोधी होने पर माने बाधा देने वाले होने पर अनुकूल होने पर अविरोधी होने पर भक्ति मार्ग में प्रवेश के लिए थोड़ी से उपकारी होते हैं। भक्ति में प्रवेश हो जाए तो फिर ज्ञान वैराग्य की तरी भी कोई आवश्यकता नहीं, अतएव ज्ञान वैराग्य भक्ति के कदापि अंग नहीं है। महापुरुषों के विचार से भक्ति के में प्रवेश के पश्चात ज्ञान वैराग्य रहने से चित्त कठोर हो जाता है। भक्ति देवी अत्यंत कोमल है, इसलिए कोमल स्वभाव वाली भक्ति भक्ति में प्रवेश का कारण भक्त्या संजात्या ज्ञाने प्रयास मुदपत् नमन्ते एव जीवन जीवन सन्मुखावितान भवदीयवासान स्थाने स्थिता सुखिगतान सन्मान प्राय तो अधिक जीतो भी ब्रह्मा जी कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। हे अजीत, जो लोग विश्व में आपके स्वरूप ऐश्वर्य महात्मा आदि ज्ञान के लिए लेश मात्र भी प्रयास नहीं करते, आपके भक्तों को निकट रहकर तो उनके मुख से विगलित होने से आपके नाम रूप गुण लीला तन मन वचन से सेवन करने से और जो सेवन करते हैं आप प्राय अधिक होने पर भी उन लोगों के भक्ति के वश दूर हो जाते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं इसकी व्याख्या में ज्ञान उपास्य परतत्व के ज्ञान के लिए तम पदार्थ के ज्ञान के लिए भी प्रयास कर मत करो। निर्विशेष ज्ञान है तो ये तो सर्वता उपेक्षणीय है ही है, किंतु भगवान का परतत्व इत्यादि जानने की पृथक रूप से जरूरत है। संतों के मुख से हरि कथा भगवान की लीला का साय होने पर अपने आप इन सब चीजों का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। संस्लेट
So, today is the 12th day of our parikram in Vrindavan, and before that we had 10 days in Mathura also. Except for some slight disturbance from some cold and fever, for which doctor is available, we have had no special problems. Shrima Durji Kadambini. Some people think, without knowledge, without jnana, there is no possibility of bhakti. Or some others think that jnana, attainment of knowledge, is also an anga or a limb of devotion. There was this discussion about this topic. Is this true? Therefore, knowledge of the Atma, the individual Jiva, and knowledge of Paratattva Bhagavan is necessary for bhakti. Even though bhakti is independent, still, in the beginning stages, we'll need some foundation of some knowledge. Therefore, Bhagavan, there are three types of jnana that are accepted in relationship to bhakti. That is tatpadatta jnana, tvampadatta jnana, and the relationship between both. Tatpadatta jnana means that knowledge in relationship to Krishna. In brief, he is swarat, self, he is self-manifest, self-illuminating and independent. He is Parabrahma, the Supreme Absolute Truth. But at the same time, he is the Akhila Rasamrita Murti, the Supreme Enjoyer of all transcendental mellows. That Sri Krishna is Swayam Bhagavan. He is the topmost limit of both opulence and sweetness. He performs varieties of pastimes in his own abode with his own devotees, his own associates. He is full of transcendental qualities, especially Bhakta Vatsalya, being affectionate to his devotees. And he is endowed with numerous potencies, especially his Swarup Shakti. That is Tatpadatta Jnana. Secondly, Tvampadatta Jnana is in relationship to the individual soul, the Jivatma. The Jivatma is Chitkan, a minute transcendental particle. He is Vibhinansa Tattva. He is part and parcel, eternally separated from the Lord, despite being non-different from Him. And He is Anuswatantra. The Supreme Lord is completely independent, but the Jivatma also has some independence, but Anuswatantra, very small. And third, what is the relationship between the Supreme Lord Krishna and the individual soul? This is the third type of knowledge. In brief, Krishna is the master, the Jivatma is the servant. Krishna is Vibhu, unlimited, and the Jivatma is Anu, minute. Bhagavan is Mayadish, always beyond the control of Maya, and the Jivatma, forgetting Krishna, can be bound by Maya. Therefore, the service to Krishna is the only relief, the only method for the Jivatma to achieve liberation from Maya. Therefore, the relationship between Bhagavan and the Jiva is called Sambandha Jnana. But there is a fourth type of knowledge which is rejected, which is a falsity, Brahma Atma Oikya Surupa Jnana. That is propounded by the Mayavadis and Advaitavadis, who say that Bhagavan, there is no transcendental qualities in Parabrahma. He is Nirvishesh. They say there is no difference between Jiva and Brahma, but this is completely false. The insignificant Jiva, Atma, how he can be considered to be the same as Bhagavan? This is complete falsity. Such persons who propound such a theory are offenders at the feet of Krishna, and they are also, this idea is completely against to the conception of bhakti. Therefore, satsanga is the main limb of devotion. We should hear from that independent Mahapurush, the great Mahabhagavat. By hearing Lila Katha from their mouth, by hearing Hari Katha, these three types of knowledge, Tatpadatta Jnana, Tvampadatta Jnana, and the relationship between them is achieved automatically. There is no need for any separate endeavor to achieve these types of knowledge except from hearing Hari Katha from the mouth of Vaishnavas. Therefore, Sri Rupa Goswami discusses, even though jnana and vairagya are not really part limbs of devotion, still in the beginning stages, they can be a little favorable. They can be accepted to a partial degree in order to enter into bhakti. But once one has entered into bhakti, then jnana and vairagya become completely unnecessary because they manifest automatically as servants of Bhakti Devi. Therefore, jnana, knowledge, and renunciation make the heart very hard, and Bhakti Devi is very soft. Therefore, Brahmaji has prayed in his prayers, Gyane Payasam Udapashyana Manta Eva, Jivanti Satmakaratam Baladiya Vatam Stane Stita Shutikatam Tanubatmano Vir Aprayasau Jivajito Aprayasau Ajitajito Stavistas Chilokya. Therefore Brahmaji has said, there is no need to endeavor for knowledge or renunciation. In Hey Bhagawan, your devotees who hear from those who hear from your devotees, they never try independently for the attainment of knowledge. Instead, by performing seva to the kirtan of your name, form, qualities and pastimes, even though you are uncontrollable, you become controlled by such a srota, by such a hearer. Therefore, that nirvishesh jnana, which propounds the non-difference between jiva and brahm, is completely contemptible and completely rejectable in all ways. Therefore, devotees make no separate endeavor for all this, Jiva Goswami is saying. By hearing Harikatha, we achieve renunciation of knowledge automatically.
Atayev, agya vyakti hi jnan ko bhakti ka sadhak kahte hain, buddhiman log nahi kahte. अरे ज्ञान की तो बात क्या है, ज्ञान के द्वारा जो साध्य वस्तु है उनकी उसकी अपेक्षा ही भक्ति का उत्कर्ष प्रतिपादन हुआ है। राज पते गुरु अलंग अवतानी जदूना इत्यादि में मुक्ति ददात कर ही इसे स्मरण भक्ति
योग
भगवान मुकुंद स्वयं पांडव और जदवंतों के स्वामी गुरु इष्ट देव सुमी कुलपति और कालक थे। वे कभी कभी उनके आज्ञाकारी दास भी हो जाते थे, परंतु भगवान ऐसे जनहितकारी होते हुए भी भजन करने वालों को मुक्ति दे देते हैं, किंतु प्रेम भक्ति को छिपा करके रखते हैं, नहीं देते हैं। मुक्ति सहज है, परिवाहक्ति बहुत ही गंभीर है। इस श्लोक की सारा दसवीं टीका में श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है कि भागवत के श्रवण करते समय महाराज परीक्षित ने सोचा कि हमारे पूर्व वंश में भगवान का कोई अवतार नहीं है। मन ही मन में खेद कर ले, उस समय सर्वज्ञ सुखदेव गोस्वामी उनके भाव को समझ करके मुक्ति की अपेक्षा भक्ति का उत्कर्ष प्रतिपादन करके बोले, क्या सुखदेव, जिस कुल में भगवान का अवतार होता है उस कुल की अपेक्षा जिस कुल में भक्ति का या भक्त का अवतार होता है वो कुल श्रेष्ठ है। भगवान की अवतार जिस कुल में होता है उससे श्रेष्ठ है जहाँ पर कि भक्तों का अवतार होता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा वशीभूत होता है। ऐसे किसी के कुल में जन्म निश्चय नहीं होता है, इसलिए पूर्व वंश में भगवान का कोई अवतार नहीं है यह बात ठीक है, किंतु उसमें भक्त का अवतार, पांडव लोग उसमें जन्म लिए हैं जिनके यहाँ भगवान जाते हैं और उनके आदेश को पालन करते हैं, उनके घोड़ों को धोते हैं, पानी पिलाते हैं, रस छांटते हैं और सब प्रकार की सेवाएं करते हैं। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा सौभाग्य है ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। यहाँ तक कि दूध का कार्य करते हुए उनके दास क्यों हैं, भक्ति व्यक्ति किसी उपाय से भगवान को वशीभूत नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। क्यों?
कृष्णा नेम इज मुकुंद।
भगवान उपासकों को भले ही मुक्ति दे दिया
था,
उनका नाम मुकुंद है, किंतु प्रेम भक्ति को जगत की पार करती है। किसी किसी का कहना है भक्ति देने से
पीपल आर गिवन भक्ति
तो वशीभूत हो जाएंगे, इसलिए उनको प्राप्त होगा, किंतु पाप कर भक्ति क्या है, आनंदमयी भक्ति है जिसमें लाजनी शक्ति ये भक्ति है, इसलिए भगवान को तुम्हें आनंद ही होता है भक्त से वशीभूत होने में उनको कोई कष्ट नहीं होता। यहाँ पर इस श्लोक में मुक्ति ददात कर ही की कभी माने क्या, भगवान सब समय सभी भक्तों को प्रेम भक्ति दान नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। जब तक प्रेम भक्ति के प्राप्ति के लिए हृदय में तीव्र आकांक्षा नहीं जग जाती और उसमें कुछ कामना वासना उसके हृदय में रख, तब तक नहीं देते हैं। किंतु भक्त जब योग्य हो जाता है तब उसको देते हैं। जैसे उदाहरण देकर के कहा है, स्नेहमयी जननी जिस प्रकार अपने रोगी संतान के लिए रसगुल्ला खीर छिपा करके रखती है उसको नहीं देती, और जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसको देती है, और इसका फिर स्वास्थ्य ठीक होने पर इसको इसमें दया है क्योंकि वो हजम नहीं कर सकते। ऐसे जिसके अंदर में कामना वासना है हरिनाम करते हैं हमको रुपया हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो क्या होगा, उच्छेद के बहाने भक्ति वहां से निकल जाती है और उसको धन इत्यादि प्रतिष्ठा मिल जाती है। इसलिए खबरदार, हरिनाम करते समय इन चीजों से सब समय दूर लाना, कभी प्रतिष्ठा की रुपए की और कोई चीज चिंता हृदय में नहीं आ सकता। हाँ,
therefore some foolish people think that jnana and vairagya are limbs of devotion, but an intelligent person will never say so. Therefore mukti, Brahma, becoming one with Krishna, is rejectable always, and Srimad Bhagavatam has rejected that from the beginning. Therefore Buddha is speaking very fast. Therefore Sukadeva Goswami said, hey Parikshit, ji, Krishna, who is the Sudhir, the well-wisher, the Pala, the maintainer, the Raksha, the protector, and the master of the Yadu and the Pandav dynasty. What else could remain for you? Therefore Krishna easily gives mukti, but Prema Bhakti he remains, he keeps covered. Therefore mukti is easily attained, but this Prema Bhakti is supremely rare and not attained so easily. Therefore Pariksit Maharaj, he said, O Gurudev, and it seems that no avatar of Bhagavan has appeared in the Puru dynasty. Therefore Sukadeva Goswami, understanding the mind of Pariksit Maharaj, because Pariksit Maharaj is in that dynasty, he said, no problem. Because Bhagavan is not so much concerned with the dynasty, he is rather concerned with the bhakti in the heart of the devotee. Therefore Pariksit, in the dynasty of Puru, many great devotees have appeared, especially the Pandavas. What to speak of Krishna appearing in a dynasty, Krishna served the Pandavas by massaging his horses, by becoming their messenger, by doing many, many different types of seva. Therefore Krishna served the Pandavas. Therefore he showed he is only controlled by pure devotion. Krishna has no concern with this dynasty or that dynasty. Therefore Mukunda, one name for Krishna is Mukunda because he gives mukti, but bhakti he keeps a little bit covered. Some people think Krishna keeps bhakti covered because if Krishna is controlled by his devotee, then Krishna will suffer pain. But this is a very foolish thing, because bhakti gives extreme happiness to Krishna. And when Krishna is controlled by the pure devotee, he also receives great happiness. Therefore, but Krishna does not give devotee prema bhakti until the last, until he sees that the devotee is not very restless and eager to achieve bhakti, then Krishna will not give it. But it's not that Krishna will never give it. When qualified, then Krishna will also give bhakti. Example is given here by Sri Vishnu Chakravarti Thakur. The mother, she has a diseased son. Therefore she has many rasgullas, sweet rice, malpuras,
perfect, but she is not giving the son because the son is diseased, and if he takes that, then his disease will increase. But it's not that she has no intention to give. When the son is cured of disease, then she will happily give all these things, because she is keeping them only for him anyway. Therefore, as long as there is some kamvasana, some material desire in the heart of the sadhak, while chanting Harinam, the sadhak may think of money, may think of women, may think of pratishta, then Krishna does not give prema bhakti, because that devotee is unqualified and desires other things. Therefore, be very careful. When we chant Harinam, we should never think of women, money, name or fame. Otherwise, these things will come very easily, but prema bhakti will not come. Therefore, sadhu savadam. Be careful.
Hare Krishna, Sita Devi from England, she is waiting for the doctor. Srila Akinchan Maharaj is very, very sick. So doctor needs to go and attend him immediately. Prema Mai Devi from England. The doctor can go with her. Is Dr. Prem Mai here? If she is here, please contact Sita Devi from England.
Dr. Prem Mai is at home. एबार हम सदर मठ में जाकर के हमारे अखिलचंद महाराज का बहुत बुखार हुआ है, देख लीजिए बहुत तेज बुखार है। इसी कारण आप सीधा चले जाइए सदर मठ में, इधर से कीर्तन एक घिना है इधर से।
हरे कृष्णा, जगदीश प्रभु who served in kitchen and he had dispute with someone, local person, please contact me. Thank you. Hare Krishna. Jagadish from America. Thank you.
Kishi kishi. Jnan Pradhan Shastra mein भक्ति की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतला रहे हैं, उसके संबंध में बतला रहे हैं। वामन अवतार है, सर्वशक्तिमान और सब गुणशाली होते हुए भी भगवान उपेंद्र के रूप में इंद्र के छोटे भैया होकर इंद्र की सब प्रकार से पोषण करते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, किंतु वामन अवतार में इंद्र के छोटे भैया होकर के जन्म लिया और उनको उच्च आसन दिया करते हैं। तो इसमें भगवान की हीनता नहीं है, भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। वे कृपा करके ऐसा करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति देवी भी उन्नत होकर के कहीं पर ज्ञान अंग के रूप में दिखाई पड़ती है, ये उनकी कृपालुता है। क्यों? भक्ति नहीं रहने से कर्म योग इत्यादि कोई अपना फल नहीं दे सकता। ग्रंथकार चक्रवर्ती ठाकुर जी अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए भक्ति की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न हो सकता है, जो लोग भक्ति मिश्र ज्ञान की साधना करते हैं, भक्ति की सहायता के बिना कोई भी साधन फल नहीं देता, भक्ति बिना कोनो साधन जीते नारे फल इत्यादि शास्त्र वचन में जो ज्ञान के साधक मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति की साधना करते हैं, वहां ज्ञानांश के रूप में भक्ति देनी रहे। यदि भक्ति न रहे तो ज्ञान अपना फल जो मुक्ति है वो नहीं दे सकता है, इसलिए वहां पर भक्ति गौण रूप होने से भी श्रेष्ठ है, इसी को बतला रहे हैं। वहां भक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता किस प्रकार से सिद्ध होगी, यहां पर ज्ञान के रूप में है। भागवत में ऐसी भक्ति को सात्विकी भक्ति कहा गया है, पहले बतला है। जो जिस भक्ति के द्वारा मुक्ति होती है वह भक्ति सात्विकी है, अतएव वह भक्ति का निर्गुणत्व किस प्रकार से प्रमाणित होगा, ये चक्रवर्ती ठाकुर जी एक उदाहरण देकर के बतला रहे हैं। आठवें स्कंद में बामन देव की लीला का वर्णन हुआ। बामन देव परम स्वतंत्र सर्वशक्तिमान अप्राकृत सर्व गुण संपन्न होकर के स्वेच्छा पूर्वक देव राजेंद्र के छोटे भैया हुए और उन्होंने बलि महाराज के निकट उन्हीं के लिए इंद्र के लिए ही बलि महाराज के निकट त्रिपाद भूमि की भिक्षा ग्रहण करने से बहाने अपने दो पग से स्वार्थ और मत्त को नाप लिया और महाराज बलि को पताल में भेज करके स्वर्ग इत्यादि का राज्य इंद्र को दे दिया है, उनका पालन पोषण किया। बामन देव उपेंद्र नाम ग्रहण करके उपेंद्र छोटे भाई के छोटे भाई बने और इंद्र को अपने ज्येष्ठ भ्राता की भांति सदैव सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार उनका पालन पोषण करने से क्या विश्वजन उपेंद्र भगवान को सचमुच इंद्र की अपेक्षा छोटा समझेंगे नहीं, ये भगवान की कृपालुता है। इसलिए भगवान बामन देव का उपकर्ष ही सिद्ध होता है, अपकर्ष नहीं, क्योंकि जीव साधन के द्वारा जितना भी महत्व की तरफ में बढ़ता है उतना ही उसके जीवत्व का विकास होता है। उसी प्रकार भगवान भक्तों के प्रसिद्धूत होते हैं, उसी प्रकार भगवान की भगवत्ता का भी विकास, जितने भगवान भक्तों के प्रसिद्धूत होते जाएंगे उनकी भगवत्ता का चरम प्रकाश, गोपियों के सबसे अधिक वशीभूत है उनकी भक्ति का चंद पराकाष्ठा है। तात्पर्य यह है कि सर्वशक्तिमान सब समर्थ भगवान ने इंद्र का छोटा भाई बनकर इंद्र की रक्षा की और उसका पालन पोषण किया। विचार पूर्वक देखा जाए तो भगवान की इस लीला में उपेंद्र की इंद्र के प्रति करुणा ही दिखती है। भगवान स्वयं स्वतंत्र सर्वज्ञ सर्वसमर्थ होकर के स्वेच्छा पूर्वक इंद्र के छोटे भाई बने और अपने को उपेंद्र कहलाए और इंद्र की प्रधानता दी, ईश्वर भगवान का कुछ भी अपकर्ष नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान प्रधान शास्त्रों में जो ज्ञान को भक्ति का साधन बतलाया गया है और भक्ति का अवकर्ष दिखलाया गया है, भक्ति दया करके उन्नत होते हुए भी उसके फल मुक्ति को प्रदान कराती है, इसलिए भक्ति का उपकर्ष अपकर्ष नहीं उपकर्ष ही साबित होता है।
Therefore, in some shastras, we see, especially Dhyana shastras, we see the predominance of the concept of liberation and the achievement of Dhyana. In those shastras, it appears that Bhakti Devi is neglected and Mukti is established. Sri Vishnudas Saraswati Thakur gives a very, very refined analysis of this point. He says that Bhaman Dev, despite being the independent Supreme Personality of Godhead endowed with unlimited potencies, still
still, he appeared as Upendra, the small brother of Indra. It seemed that he took help from Indra, and he even gave a big seat to Indra. But still, this does not mean that Bhagavan Brahman had any shortage or was lacking anything. We should understand this is the mercy of Brahman Dev giving respect and position to Indra. Therefore, in the same way, we should understand that Bhakti Devi, she is predominant. But still, because of her mercy, she is giving some support to Jnana. Therefore, bhakti is not attained as a result of jnana and karma. She is independent. But jnana and karma cannot give any result independent of bhakti. Therefore, bhakti mishra sadhan, when bhakti is used as a sadhan, as a practice to achieve liberation, this is Bhakti Devi's mercy. Because without Bhakti Devi, no one can get liberation anyway. Therefore, bhakti out of her mercy remains as a limb of jnana. But it doesn't, this is not the case. This is her mercy. Even though she is predominant, out of her independent desire, she can remain secondary to give the fruit of mukti to the jnanis. Therefore, Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur gives discussion here. Upendra. Upendra means the small Indra or the brother of Indra. Therefore, Bhagavan appeared as the small brother of Indra, and on behalf of Indra, he went to beg three steps of land from Bali Maharaj. Bali Maharaj had stolen the whole universe from Indra, including the heavenly planets. Therefore, on behalf of Bali Maharaj, Brahman Dev went there. Therefore, he begged three steps of land. With two steps of land, he took the whole universe. And he pushed Bali Maharaj down to Patalok. And he returned Swarga and the other planetary systems back to Indra. But we should not think that Bhagavan was really the small brother of Indra. He wasn't begging any chapatis from Indra. We should understand that he is independent and everything is possible for Bhagavan, but out of his mercy to Indra, he accepted a position. Therefore, this is the greatness of Bhagavan. That much Bhagavan is controlled by a devotee, that much he manifests his being Bhagavan. Especially when he is controlled by the gopis, at that time his Bhagavata, his quality of being the Supreme Personality of Godhead, reaches its topmost limit. I thought that was a good point. Therefore, in the same way, bhakti is not dependent on jnana. Jnana is dependent on bhakti. But bhakti, out of her mercy, accepts a secondary position, even though she is prominent, to mercifully give liberation to the jnanis.
Om Bhagyan Smiran Rasya Gyanan Jana Sarabhaya Chaktur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gura Shandraya Radhikaya Tadaraya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namaha Sakrinayana Gochari Kritadada Sujara Kula Prapalla Kamalekshana Pranayaka Karasi Moka Nagora Charanam Jahasi Kadapi Loto Loko Uttara Spuran Madura Manava Nabanama Rago Namada. On a respectful basis, Sikshagur Devi Pavishtham, Pada Stoja, Shimada Voichara, above them, the Sadhimaraj, the Prabhupada. Paramahansa Parivar, the Hari Vimishma, Shimad Bhaktam, Narayan, Goswami Maharaj. To all our Vaishnavas and Vaishnavas, according to their respective qualifications, Gurudev must be allowed me to speak a few words on that. Lord Mahaprabhu's mercy. Kailayam narakayate chitasapura kashupushpayate durdantandriya kala sarpaputali prodkatatam jayate vishpam purnasukayate vidimahendradishthikitayate yatkaran kitakshavai bhagavatam tam tam goranevastu maha. So this verse written by Srimad Tungavidya Avatar Prabhupada Saraswati Pad gives some inkling of the glory of Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Here, Kaivalyam Narakayate, for someone who has received that mercy, then Kaivalyam, merging with the impersonal Dhamma, it appears like Narak, like hell. Because in that state there is no opportunity to serve the Lord. This is shown vividly by Sri Sarvabhauma Bhattacharya when he came before Mahaprabhu and he put his verse to say, Nukamakam Sukhani Shaman Bunjani. At the end he said, Mukti Pade Savaya Bhakti, he changed it to, he wanted to change it, Bhakti Pade Sadeva. He said, everyone, bhaktis, they feel this day for to think of this concept of mukti. So therefore, it is like hell. Whereas, Kaivalyam at the end of Srimad Bhagavatam, so I describe actually as a prayojana, in the sense of kevala bhakti, explicit bhakti. Then, Kridasaku of then the glories of going to the heavenly planet, the Nandan Khan, the Aksaras, they appear like some imaginary phantasmagoria, like a flower in the sky. There's no such thing. This is seen that persons like Vishwamitra Muni, he, just by hearing the ankle bells of Menaka, he fell down and lost his sadhana and had to do sadhana for another 60,000 years. Pini Punya Marti Lokam Vishante, those people who attain even that position, and again they fall down. It is just like a bubble, a fiyaka nishna sitakala matavalam jati vanti lo madhavaja jagadanga nasa. Like the universe is like bubbles. In the Karanarnava, the ocean of the causal ocean, they're coming and going. The lives of Brahma and Indra and so on, they're similarly insignificant. Vishwam Purna Sukhaya Sutta. Durdantantari Kala Sarpa Pratavi Prabhupada Samuschayate. That the senses, the worst enemy in this world are these very difficult soul senses. They appear like the snakes who have been to the dentist and had their fangs extracted. They have no more potency to bite and give any poisonous effect. And persons like Haridas Thakur, who chant Krishna, they are able to easily defeat Mahamaya. Therefore, Yamunacharya says, Yadavadi Mamacheta Krishna Padaradim De Navanavara Sadamana Jitaran Samasi Tadavadim Patanari Sangame Svaryamani Bhavati Mukhavikarishtu Nishtivaramukha. Ever since I've been engaged in the activities of hearing the lotus, of the lotus feet, Radha and Krishna, and finding newer and newer pleasure in that remembrance. Whenever somehow I think of the mundane so-called pleasures of material sex life, I want my lips curl with a state and I sit at the thought. So this is the state of someone who's actually received the glory of Mahaprabhu's mercy, his sidelong glance of mercy. Everything
material becomes significant. The world appears full of happiness. Vishvam Purnas Sukhayate. Atmani Nibedana Triyapade Kori Hoyenu Paramasukhe. So the Kanandadeki, and in four directions, this is happiness. And then these so-called greatly powerful beings like Indra, Brahma, Rudra, they appear like insignificant insects. Therefore, Sri Prabhupada Saraswati says that Keshet Sagara Bhudaranna Vipara Brahmanti Nrityanti Vai Keshet Pundara Daiva Purandara Adish Mahakshetam Kshepanto Muhu Anandod Pasajava Vipala Taya Te Dweta Chandra Daya Te Nodaka Vanti Idrishi Punashchetam Nrityotsare. Someone in the beautiful festival of Chaitanya Mahaprabhu is dancing, then like Advaita Acharya and others, as they dance, they appear to glide over the mountains and oceans, and these demigods appear very insignificant. So in this way, you can have some idea of the glory of Mahaprabhu's mercy. Of course, to get the glory of Mahaprabhu's mercy, I have no adhikar, but Gurudev, who has Chaitanya in his heart, he can give him. Therefore, we pray for his mercy on this day.
संबंध में कुछ बोलो
ओम अज्ञान से बिना मुक्त ज्ञान संजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनर्पितचरिं चिरात् करणयावतीर्ण कलौ समर्पन्तोन्नकृत्यन्वसां स्वभक्तिश्रियं हरिपूर्णसुन्दरद्युतिपदन्दसन्दीपिता सदा हृदयतन्द्रे स्फुरितवसति नन्दनन्दनः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम स्मरणीय गुरु पादकरणो विष्णु पाद स्तोत्र षष्ठी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोवर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम तत्पश्चात उपस्थित चतुर्थी पादगण वैष्णव एवं वैष्णवी वृंदा सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। महाराज जी मुझे आज्ञा दी श्री चैतन्य महाप्रभु के अवदान और शिक्षा के विषय में कुछ बोलने के लिए। गुरु वैष्णव के चरणों में बैठकर जो कुछ सीखा है यथिंचित एक दो शब्द बोलकर अपनी वाणी को पवित्र कर गुरु की आज्ञा का पालन करने की चेष्टा करूँगी। हम लोग पूर्व वक्ता महोदय से सुने कि महाप्रभु कौन है, किस लिए महाप्रभु इस धराधाम में आए। राधा कृष्ण मिले चलो श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में आए
लाइट लगा कर
और किस लिए आए। राधा या प्रणाम महिमा के विश्वभा अर्थात शिव शुभानंदनी के भावों को स्मरण कर आस्वादन करने के लिए विशेषकर मदनाथ महाभाव में जिस विश्वानंदनी जिस जातीय का आस्वादन करती थी उस आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही गौर कृष्ण बनकर आए। और रसिक शेखर कृष्ण परम परम करुण परम करुणा के कारण उन्होंने उसी राधा जी की भावों की जो शोभा है, जो संपत्ति है, अर्थात रति उल्लास भावोल्लास रति सहचरी भाव मंजरी भाव, इसको वितरण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। महाप्रभु जैसे श्री कृष्ण की गीता है मुख की, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के केवल 8 श्लोक ही हम लोगों को प्राप्त होते हैं। उन 8 श्लोकों में समस्त शास्त्रों का सार भरा हुआ है। जैसे चेतो दर्पण आदिनम भव महादावा निर्वापन से लेकर चंद्रता वितरण विद्यावर्धनम इत्यादि। अभी सुने कि महाप्रभु कैसे अपनी अवदान कैसे शिक्षा दिए। हम लोगों का प्रश्न है कि इस शिक्षा से हम लोग कैसे जीवन को अपने को प्रारंभ करें। प्रारंभ करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहे चेतो दर्पण मार्जनम, हे जीव हे साधको पहले अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ करो। साधक पूछता है हे प्रभु हे गुरुदेव हे वैष्णव हे साधुजन उस चित्त को कैसे साफ किया जाएगा। बाहर का दर्पण हो तो उसे साबुन से किसी सोना से साफ किया जा सकता है, परंतु हृदय रूपी चित्त कैसे साफ होगा। इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामिकारी बहुदानी सर्वशक्ति, अर्थात संतों के संग में रहकर साधु संग में रहकर हरि कथा सुनते सुनते जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जब जीव गुरु पदाश्रय करता है और गुरु पदाश्रय करने के बाद में गुरुदेव जो अप्रकट वृंदावन से उस कृष्ण सेवा भावना की जो सेवा भावना रूपी जो बीज को लेकर आते हैं, उसी बीज के रूप में मंत्र के रूप में इसी बीज को साधक के हृदय में बपन कर देते हैं। साधक के हृदय में बीज बपन करने के बाद में श्रवण कीर्तन और स्मरण के द्वारा उसको सिंचन करते हैं। कैसे नाम करना चाहिए, महाराज जी बोले हैं नाम नामिकारी बहुगा। अनेक प्रकार के नाम हैं, प्रमुख 2 प्रकार के गौण और मुख्य नामों में भी जो राधा जी से गोपियों से संबंधित है ब्रज के नाम है वह मुख्य नाम है। इन नामों को जैसे ही हम लोग स्मरण करते हैं, जैसे राधा दामोदर, राधा दामोदर कहते ही राधा दामोदर की लीला कैसे हुई, वे राधा जी के दाम में कैसे बधे, वह लीला स्मरण हो आती है। राधा रमन, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंददेव, अर्थात इन नामों को स्मरण करते हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी नामों से सर्वोपरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में समस्त नाम में जितने भी प्रकार के नाम हैं समस्त नाम इसके अंदर हैं। कैसे भगवान की श्याम सुंदर की राधा जी की श्याम सुंदर की लीला 2 प्रकार की है, विप्रलम्भ और मिलन 2 ही प्रकार की लीला है, किसी प्रकार की नहीं है। इस महामंत्र में दोनों प्रकार का है मंत्र, हरे कृष्ण मिलनात्मक। जैसे ही साधक हरे कृष्ण कहता है, 2 दिन पहले ही महाराज जी से श्री मुख से सुना परम देवो मोक्षम न मोक्षम बदीगा न चाण्यम वीरण बरेदास पीहा, उसमें कहते अवधि जो श्रवण कीर्तन है उसकी अवधि जो मोक्ष की जो अवधि है श्रवण कीर्तन, उसमें भी हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण देके बताया। हरिदास ठाकुर जी कैसे 3 लाख नाम जप करते थे और उसमें रूप गोस्वामी जी श्रील सनातन गोस्वामी जी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी भाव बतलाया कि वे कैसा नाम करते थे। हरे कृष्ण कहते ही अपनी स्मृति देह स्मृति हो जाती थी और साथ ही साथ नाम लेने के साथ ही साथ कैसे भाव राज्य में प्रवेश करके देह स्मृति को भूलकर सिद्ध रूप में राधा जी की सेवा में संलग्न रह जाते थे। इसके विषय में यदि हम लोगों को और ज्यादा जानकारी करनी है तो बिलास पुष्पांजलि पढ़ें, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड के तट पर बैठकर इसी नाम का जाप करते 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 भूल जाते थे अपनी देह को, और देह को भूल कर सिद्ध देह में अर्थात मंजिल रति मंजरी के रूप में श्री विष्णु हनुमान बने की कैसे मन चाह सेवा करते थे ऐसे नाम को। ये नाम उनकी संख्या पूरी पता नहीं चलती थी कि घंटों उनकी समाधि लगी रहती थी। ऐसे नाम महाप्रभु हम लोगों को शिक्षा दी है साधक प्रारंभिक दशा में इस नाम को करें, और कैसे करें साधु संग में रहकर निरंतर उसी नाम की चिंतन करता हुआ। अभी अभी हम लोग श्री गुरु जी के मुखारविंद से सुने कि नाम करते समय यदि संसार की कोई भी चिंता है, कोई भी किसी भी प्रकार की नाम देव जो कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है, वे अपनी आप हम लोगों की इच्छा को पूर्ण करके जो देने वाली वस्तु है उससे अंतर ध्यान को वंचित कर देंगे। इसलिए हम लोगों को अपने चित्त के दर्पण को साफ करना है, तो गुरु पदाश्रय करके सतत साधु संग में रहकर नाम करें, इससे चित्त रूपी दर्पण साफ होगा। चेतु दर्पण मार्जनम भव महाभावा अग्नि निर्वापणम। जो हमारे दावा नल है, जो हृदय में ताप से हमारा हृदय जल रहा है, वह हृदय में शांति प्राप्त होगा नाम करने से, साधु संग करने से। धीरे धीरे दावा नल समाप्त होगी। सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं, संसार दावा नल निरोगा प्राणाय करुणा घना घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणा अवर्णस वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु महाराज जी कैसे हैं, संसार रूपी दावानल में जले हुए अपने साधक, अपने शिष्य और शिष्या के हृदय में परम करुणा का संचार कर उस दावानल को जड़ से समाप्त कर प्रेम भक्ति पिलाकर उसे शुद्धि करते हैं। चितु तर्पण मार्जनम भव महादावी निर्वापणम। धीरे धीरे जैसे जिस प्रकार से साधक अपने भक्ति राज्य में प्रवेश करता जाता है, उसका यह दावानल दूर होता चला जाता है। कैसे कैसे करना चाहिए भजन, तृतीय श्लोक में कहते हैं त्राणपति सुनी चेन तरोपी सही सुना अमाने नाम मान देने से कन्या सदा हरी। हम लोगों को कैसे भजन करना चाहिए, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कैसे तरण से भी हम लोगों को तुच्छ समझकर। एक बात महाराज जी की स्मरण हुआ थी है, हम लोग मैं अपनी बात कर रही हूँ आप लोगों की नहीं, जो हम लोग अपनी अपनी मैं दिखाते हैं ना दीनता, ये सब कपट का है। सचमुच दैन्यता कब हृदय में आएगी, दीनता कब हृदय में आएगी, जब भक्ति देवी हृदय में पदार्पण करती हैं स्वतः ही दीनता हृदय में आ जाती है, स्वतः ही तनाजी दबी सुनी से समझने लगता है। प्रातकाल की सभा में हम लोग सुने कि महाप्रभु कहते हैं ना प्रेम गंधो गंधो अति दरार अति, में कैसे प्रेम की भी गंध नहीं है, ये कौन कहेगा। यदि इस बात को हम लोग कहें तो परम गंभीर है, हम लोग ऊपर से कहते हैं, परंतु महाप्रभु इस बात को, क्योंकि महाप्रभु इस भाव को कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वे तो भक्ति के दाता हैं, प्रदाता हैं, उनके लिए ये बात सार्थक है। अर्थात जैसे जैसे भक्ति हृदय में आती है वैसे ही वैसे यह श्लोक में साधक प्रतिष्ठित होने लगता है। प्रणागति सुनी चेन तरोपी सही सोना, सही शक्ति आ जाती है उसमें, अमानी नाम हमेशा ही दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान की इच्छा न करके नाम कीर्तन में लगा रहता है। कब होता है ये, जब कम से कम साधक रुचि स्थिति पे आ जाता है, तब इसकी कुछ कुछ झलक, इस श्लोक की कुछ कुछ झलक साधक के हृदय में प्रतिबिंबित होने लगती है। जब हम लोग प्राण अति सुनी चेन तरोपी सही सुना अमानी नाम मान देने कीर्तन या सदा हरी, इस श्लोक में प्रतिष्ठित होकर भजन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब क्या होता है, श्री कैरव चंद्रिका, जैसे रात्रि में चंद्रमा के निकलने पर कुमुदनी खिल जाती है और सूर्य के निकलने पर कमल अपने आप खिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हृदय में नाम रूपी सूर्य हृदय में उदित होने लगते हैं, तब हृदय की अंधकार का अज्ञानता दूर होकर हृदय खिलने लगता है। भक्ति रूपी जो गुरु जी बीज दिए हैं वह प्रस्फुटित होकर खिलने लगता है, उसमें से सुगंध आने लगती है। किस प्रकार की सुगंध, भगवत अनुभूति की कुछ कुछ भगवत, पहले तो भगवत अनुभूति तो पीछे होगी, उस समय अपने गुरु की अपने वैष्णवों की कृपा की उपलब्धि होने लगती है। हम लोग गुरु कृपा की उपलब्धि नहीं करते, वैष्णवों की कृपा की उपलब्धि नहीं करते और कहते हैं हमको कृपा करिएगा कृपा करिएगा। अगर सचमुच हृदय से स्मरण करें कि कहाँ हम लोग कीड़े थे, नरक के कीड़े थे, संसार में डूबे हुए थे, वहां से बाल पकड़ कर खींच कर ना चाहते हुए भी लाए हैं गुरु वैष्णव और हम लोगों को भक्ति रस पिलाकर दिखला रहे हैं कि देखो यह कितना सुखमय जीवन है। ये जब हम लोग उपलब्धि करते हैं, इसकी अनुभूति थोड़ी थोड़ी ही सी करने लगते हैं, जब श्री कैलाश चंद्रिका के प्रणाम हृदय रूपी कमल खिलने लगता है, उसमें भक्ति की कमक आने लगती है। जैसे गुरुवार जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे छोटी सी कली है फूल की, वो कब खिलती है? जब सूर्य उदित होता है तो वो धीरे 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 खिलने लगती है। जब वो खिलती है तभी उसमें सुगंध आती है। ठीक उसी प्रकार से हृदय रूपी जो हमारी कली है वह नाम रूपी सूर्य के उदय होने पर धीरे धीरे खिलने लगती है और वह गमकने लगती है। देखो गुरु महाराज जी का उदाहरण देखो कैसे गमकी की उस कमल के सुगंध से कितने धमर रूपी भौरा रूपी हम लोग मडरा रहे हैं उस सुगंध के आस्वादन करने के लिए। यह है श्री कैलाश चंद्रिका विक्रम विद्यावधु जीवनम अर्थात भक्ति देवी रूपी विद्या उसके जीवन हो जाती है, उसके बिना वह रह नहीं सकता। वह कुछ भी हो लेकिन भक्ति को छोड़कर वह जीवन यापन करना उसके लिए कठिन हो जाता है। उस समय स्मरण करता है ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम जगदीशर वा, उस समय कहता है हे प्रभो ना नाथ पृष्ठम ना चपालमिष्टम ना सार्वभौमम ना रसाधिपत्यम, अर्थात मुझे कुछ की आवश्यकता नहीं है। हे प्रभो हे दीन बंधु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो क्या दीजिए हमको वही दीजिए कि आपके देह में तड़प तड़प कर हम लोग भजन करें, तड़पन आए, कैसे उत्कंठा आए, कैसे हम ठाकुर जी के वैष्णवों के भावों में विहारित होकर कैसे भजन करें। ये भजन की उत्कंठा हृदय में जगने लगती है, तब उनको यथार्थ में समझ में आता है कि ये यदि धन जन परिवार मिला भजन करते में तो समझ लेना ठाकुर जी ने हमको अपने मूल धन से वंचित करके एक जड़ीय चीज देकर वंचित कर दिया है। परंतु सावधान शिक्षा चंद्र महाप्रभु की धारा में आकर संतों के संग में रहकर ये कम होता है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है स्वभावतः ही यथायुक्त वैराग्य आने लगता है। जैसा कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र में देखते हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अद्वैताचार्य जी के घर पर पहुंचे, जब महाप्रभु संन्यास लेकर पहुंचे हैं पहली बार, तो महाप्रभु 10 दिन रहते हैं, दास गोस्वामी जी वहाँ 10 दिन रहते हैं। 10 दिन के बाद में महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी माँ के आदेश से जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं। उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा जय जय प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब प्रभु बहुत सुंदर निर्देश और आदेश दिए हैं महाप्रभु ने, वह हमारे लिए पालनीय है, बहुत जरूरी है हम लोगों के जीवन में। क्या उपदेश दिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, स्थिर है या घर जाओ ना हो पातुल क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु कुल अंतर करो निष्ठा बाजी लोक बहिवार अच्छे राते कृष्ण तुम्हारे फोरवेल उद्धार। हे रघुनाथ तुम पागल मत बनो, मानो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्यार से हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग साधु संघ में शुरू शुरू में आ जाते हैं, पहला पागलपन चढ़ता है, घर छोड़ देते हैं बाहर छोड़ देते हैं, और घर जब यहाँ आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा भी किसी ने अपमान कर दे या कोई सेवा छोटी सेवा बतला दी तो कहते हाँ हम इतने बड़े घराने के बच्चे हैं ऐसा करेंगे ऐसा हम लोग करेंगे, पर यहाँ से मन खराब होने लगता है और भाग कर फिर हम लोग संसार में चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसा मौका स्थिर है घर जाओ ना हो बात उनका मतलब पाल लो बहुत सिंधु कुल महाराज ने हमको कह दिया रोकने के लिए, बस इसको पूरा करके समाप्त करते हो। अर्थात हम लोगों को स्थिर रहकर भजन करना चाहिए, यही महाप्रभु की शिक्षा है। दूसरे बार महाप्रभु फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा है। यदि इस शिक्षा में हम लोग प्रतिष्ठित हो गए तो भजन बन जाएगा, फिर भजन हमसे दूर नहीं है। क्या शिक्षा दी? इन भालो न खाइए, भालो न पहिए, अमानी मानस पहली लाइन रह गई ना, ग्राम कथा कहीबे ना सुनीबे, अर्थात हे रघुनाथ तुम मुझसे पूछना। रघुनाथ दास गोस्वामी जी आज हमको पूछते हैं, जय प्रभु आपने मेरा घर क्यों छुड़ा दिया, क्या करना चाहिए मुझे? रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कहते हैं, हे रघुनाथ सबसे पहले यदि भजन करना चाहते हो तो क्या करो, ग्राम कथा न कहीबे। इसी बात को रूप गोस्वामी जी उपदेश अमृत में कहते हैं, निंदा आदि सुंदर संग लब्धा, किसका संग प्राप्त करो, जो किसी का दोष नहीं देखता है वही बुराई करेगा, दूसरों की भलाई करेगा, क्योंकि वही करेगा जिसके पास साधन भजन में कमी है, साधन भजन अच्छे से नहीं करता। 24 घंटे के अंदर 24 घंटे अपनी भगवान के भजन में साधन में सेवा में अपनी एनर्जी नहीं देता है, उसी को ये दोष और सब दिखाई देते हैं। रघुनाथ तुम सावधानी से कभी भी जीवन में ग्राम कथा नहीं करना, क्यों? ग्राम कथा जिसकी भी हम लोग क्रिटिसाइज बुराई करते हैं क्या होता है, बुराई करने वाला पवित्र हो जाता है और करने वाले के सारे वैसे ही वो बेचारा मलिन होता है और उसको साफ करके अपनी और मलिनता को बढ़ा लेता है। अर्थात ना सुनना और ना कहना, भालो ना खाए भालो ना पहिए, भालो माने अच्छी अच्छी जो मन में आ रहा है जीवा को देते चले जाओ, क्या होगी, जीवा अजितेंद्रिय हो जाएगी, भजन में नहीं लग पाएगी और भजन से निकली और बस रतातल में सब किसे चुप कर देगी। और क्या करना है, सदा कृष्ण नाम लेवे, और हे रघुनाथ इससे ज्यादा पूछना है तो स्वरूप से पूछ लेना। ऐसा करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं, मन रघुनाथ जी को नहीं महाप्रभु हम लोगों को यही शिक्षा दी है, कैसे हम लोगों को भजन करना चाहिए, संबंध युक्त अनर्थ रहित भजन करने से अति शीघ्र ही हृदय पवित्र होता है, उसमें राधा कृष्ण की लीला का स्मरण होता है। इसी शब्दों के साथ अपनी भक्तिता के साथ बात करते हैं।
Hare Krishna, there is an announcement. The tent wala is saying that the devotees have taken chairs and the sheets and the mattresses into their room, into their private room here. So since tomorrow we are leaving and everything has to be shifted to Govardhan in time, please take all the chairs and mattresses, sheets, whatever is there in the room and put it here outside. Hare Krishna.